अध्याय एक पृष्ठ संख्या एक राग श्याम कल्याण। प्रचलित श्याम कल्याण राग की उत्पत्ति कल्याण ठाट से मानी गई है। यद्यपि इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, परंतु तीव्र मध्यम तथा कल्याण अंग अधिक होने से इसका कल्याण ठाट जन्य होना उचित और न्याय संगत है। तीव्र मध्यम का प्रयोग आरोह और शुद्ध मध्यम का प्रयोग अवरोह में होता है। तीव्र मध्यम के अतिरिक्त शेष सभी स्वर शुद्ध हैं। आरोह में धैवत वर्जित है एवं गंधार का प्रयोग कामोद अंग से किया जाता है, जैसे ग म प ग म रे सा। अवरोह संपूर्ण होने के कारण इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। जाति के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ संगीताचार्य इस राग को संपूर्ण संपूर्ण, कुछ संगीतज्ञ औडव संपूर्ण तथा कुछ लोग षाडव संपूर्ण जाति का राग मानते हैं, यथा पहला स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा रचित क्रमिक पुस्तक मालिका के पांचवें भाग में जो विलंबित ख्याल है, उदाहरण जैसे महारा रसिया और घटाकारी हूँ या जियो मेरे लाल अथवा पार्वती नाथ इत्यादि बंदिशों में गंधार धैवत स्पष्ट रूप से आरोह अवरोह में प्रयुक्त हुआ है, अतः इस प्रकार को मुक्त कंठ से संपूर्ण संपूर्ण कहा जाएगा। दूसरा, दूसरे प्रकार के आरोह में गंधार को कामोद की तरह लगाते हैं, जैसे ग म प या ग म ध प। इस प्रकार स्वर लेने से आरोह में भी गंधार का प्रयोग हो जाता है। इसलिए आरोह में केवल धैवत को वर्जित करके इसको षाडव संपूर्ण मानते हैं। यही मत लेखक को भी मान्य है। तीसरा, तीसरा प्रकार पंडित विनायक पटवर्धन जी द्वारा मान्य है। यह केवल अवरोह में ग म रे सा द्वारा गंधार का प्रयोग करते हैं तथा आरोह में गंधार और धैवत को वर्जित करके इसकी जाति औडव संपूर्ण मानते हैं। राग कल्पद्रुम तथा चंद्रिका सार ग्रंथों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रंथों के रचना काल में श्याम कल्याण में साम वादी संवादी मानने का रिवाज था, परंतु वर्तमान समय में पंचम षड्ज व ऋषभ पंचम वादी संवादी मानने का प्रचलन है। पृष्ठ संख्या दो। जो विद्वान इस राग में हमीर गौर सारंग और केदार का मिश्रण मानते हैं, उनके श्याम कल्याण में स्वाभाविक रूप से ही शुद्ध मध्यम कुछ दीर्घ होगा, जो कि संवादी के योग्य हो सकता है। मध्यम के दीर्घ होने से तथा म रे की संगति होने से मल्हार का भी कुछ आभास हो सकता है, किंतु भातखंडे जी के मतानुसार प्रचलित श्याम कल्याण जो कि कल्याण और कामोद के मिश्रण से बना है, अर्थात सारे तीव्र म प ध ध प, तीव्र म प नि ध अवग्रह, तीव्र म प, तीव्र म प नि तार सा ध अवग्रह, तीव्र म प, कल्याण के इस स्वर समूह में ग म प ग म रे सा राग कामोद के इस स्वर समूह को मिलाकर श्याम कल्याण राग का आविर्भाव होता है। इस स्वरूप में न तो मध्यम संवादी होने की गुंजाइश है और न तो मल्हार राग का आभास होने की आशंका ही है, क्योंकि कल्याण का तो यह स्वर ही नहीं है और कामोद में भी अनुवादी के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रचलित श्याम कल्याण में षड्ज और मध्यम को वादी संवादी मानना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता है। प्रत्युत यदि षड्ज के साथ पंचम को वादी संवादी मान लिया जाए तो यह प्रचलित श्याम कल्याण में उचित प्रतीत होगा। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि षड्ज को वादी मानना चाहिए अथवा नहीं। विद्वानों का कथन है कि षड्ज स्वर तथा राग का सृष्टि करता है। बिना वाद्य संवादी हुए ही राग में उसकी अधिकता रहती है। अतः यदि राग में षड्ज के अलावा कोई ऐसा स्वर मौजूद है जो कि वादी स्वर होने के योग्य है तो सर्वप्रथम उसी को यह स्थान देना चाहिए, क्योंकि षड्ज को वादी मान लेने से राग का विस्तार क्षेत्र भी संकुचित हो जाता है। इन सभी कारणों के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि यदि षड्ज को वादी न बनाया जाए तो अधिक श्रेयस्कर होगा। इसके अतिरिक्त ऋषभ भी वादी स्वर होने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जिस प्रकार दिन के प्रथम प्रहर में ऋषभ का वादी होना सुंदर नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार यह रात्रि के प्रथम प्रहर में भी शोभा नहीं देता। दिन और रात्रि के द्वितीय प्रहर के रागों में ऋषभ का वादी होना अधिक सजता है, यथा दिन में सारंग अंग के रागों में गौर सारंग को छोड़कर एवं रात्रि के देश अंग के रागों में। श्याम कल्याण रात्रि के प्रथम प्रहर का राग है जो कि कल्याण ठाट के रागों का समय है। कल्याण ठाट के रागों में अधिकतर यह देखा गया है कि ग प स्वर वादी का स्थान ग्रहण कर लेता है। उदाहरणार्थ यमन, शुद्ध कल्याण, भूपाली, जैत कल्याण, चंद्रकांत, मारुविहाग इत्यादि रागों के नाम लिए जा सकते हैं। यद्यपि ऋषभ का भी महत्व कम नहीं रहता, फिर भी एकाध ही ऐसे राग मिलेंगे जो कल्याण ठाट के हों और उसमें ऋषभ को वादी का स्थान मिला हो। ऐसे रागों में अपवाद स्वरूप एक राग छाया नट राग है जिसमें ऋषभ वादी है। इन सभी कारणों के प्रकाश में श्याम कल्याण राग में पंचम षड्ज वादी संवादी की धारणा अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। पंचम षड्ज वादी संवादी मानकर गाने से राग शुद्ध सारंग से भी अधिक भय नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ऋषभ पंचम वादी संवादी और सारंग अंग प्रधान है। श्याम कल्याण में षड्ज के अलावा पंचम ही एक ऐसा स्वर है जिस पर सर्वांग न्यास किया जाता है। मध्यम धैवत पर न्यास होता नहीं, ऋषभ पर अवरोहात्मक न्यास एवं निषाद पर आरोहात्मक न्यास किया जाता है। इसके विपरीत इन स्वरों पर न्यास करने से शुद्ध सारंग की स्पष्ट छाया पड़ने लगेगी। उदाहरणार्थ ऋषभ पर आरोहात्मक न्यास सा मंद्रनी सा रे, म रे सा मंद्रनी सा रे, मंद्र प मंद्रनी सा रे, सा मंद्रनी मंद्र ध मंद्र प सा मंद्रनी सा रे। पृष्ठ संख्या 3। निषाद पर अवरोहात्मक न्यास सा रे सा मंद्रनी, म रे सा मंद्रनी, मंद्र प मंद्रनी सा रे सा मंद्रनी सा रे म रे मंद्रनी इत्यादि। इसलिए पंचम ही इस राग में वादी के योग्य दिखता है और यही होना भी चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि राग में ऐसा नियम होता है कि यदि वादी पूर्वांग में हो तो संवादी को उत्तरांग में होना चाहिए। श्याम कल्याण में यदि वादी स्वर पंचम को मानेंगे तो दोनों मुख्य स्वर पूर्वांग में हो जाने से राग के नियम का उल्लंघन होगा, परंतु ऐसा बहुत से रागों में हुआ है। उदाहरण के लिए राग केदार में मध्यम षड्ज, कामोद में पंचम ऋषभ, जैत कल्याण में पंचम षड्ज, हमीर में पंचम षड्ज वादी संवादी हैं। इन सभी रागों में वादी संवादी पूर्वांग के ही स्वर हैं। जब इन रागों में इस प्रकार के वादी संवादी न्याय संगत हैं तो फिर श्याम कल्याण में भी असंगत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु नियम यह होना चाहिए कि पूर्वांग राग के वादी स्वर पूर्वांग में हो और उत्तरांग रागों के वादी स्वर उत्तरांग में होना चाहिए, परंतु संवादी स्वर वादी के विपरीत क्षेत्र के अतिरिक्त भी 4 अथवा 5 स्वर की दूरी पर उसी क्षेत्र के अंतर्गत हो सकता है। ऐसा करने से बहुत से राग जो अभी अपवाद की श्रेणी में भी आते हैं वह अपवाद से बच जाएंगे। राग श्याम कल्याण में पंचम के साथ ऋषभ को संवादी मानना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस राग में कामोद का मिश्रण है और कामोद में भी यही स्वर वादी संवादी हैं। इस कारण कामोद अंग अधिक होने की संभावना रहेगी, जबकि मुख्य राग से मिश्रण वाले राग का अंग महत्व कम होना चाहिए। इसलिए श्याम कल्याण में ऋषभ के स्थान पर षड्ज को ही संवादी मानना अधिक उचित होगा। पृष्ठ संख्या 4, स्वरों का प्रयोग तथा महत्व। प्रस्तुत राग में ऋषभ का अवरोहात्मक न्यास दृष्टव्य होता है, यथा प तीव्र म, प ग म, रे रे, तीव्र म, तीव्र म, प ग म, रे, मंद्रनी सा, मंद्रनी, मंद्र ध, मंद्र प, मंद्रनी सा रे म रे, रे तीव्र म, तीव्र म, प ग म, प ग म, रे इत्यादि। इस प्रकार के प्रयोग को अवरोहात्मक न्यास बहुत्व कहेंगे, जो कि ऋषभ के लिए उपयुक्त है। गंधार का प्रयोग जब कामोद अंग से किया जाता है तब ग म प ग म रे व कभी कभी ग म ध प, इस प्रकार की स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है। ग म प या ग म ध प स्वर संगति का प्रयोग करने से गंधार का प्रयोग आरोह में होता है, परंतु अवरोह में गंधार का अत्यंत अल्प प्रयोग किया जाता है। अवरोह में गंधार का प्रयोग प ग म रे सा इस प्रकार किया जाता है। आरोह की अपेक्षाकृत गंधार का महत्व अवरोह में अधिक है, यद्यपि आरोह अवरोह दोनों में गंधार का अल्पत्व है, परंतु अंतर यह है कि आरोह में गंधार का प्रयोग सीधा होता है, यथा ग म प व ग म ध प। इसके विपरीत अवरोह में गंधार का वक्र रीति से प्रयोग किया जाता है, यथा ग म रे सा। शुद्ध मध्यम आरोह में अत्यंत अल्प है, ग म प व ग म ध प, इस प्रकार ग प और ग ध के बीच कैद रहता है, परंतु शुद्ध मध्यम का अवरोह में लंघन अल्पत्व तथा अलंघन बहुत्व दोनों ही है। इस कथन में वस्तुतः विरोधाभास मालूम होता है, परंतु राग के स्वरूप पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जब पंचम से नीचे को उतरते हैं तो प ग म रे सा स्वर समुदाय का प्रयोग करते हैं, अतः प ग की संगति होने से मध्यम को छोड़ देते हैं। इस प्रकार लंघन अल्पत्व हो जाता है। इसके विपरीत जब गंधार से ऋषभ की ओर आते हैं तो तो बिना मध्यम लगाए कभी नहीं उतर सकते, यथा प ग म रे सा। इस प्रकार शुद्ध मध्यम का अलंगन बहुत्व हो जाता है। प्रस्तुत राग में तीव्र मध्यम का अलंगन बहुत्व है, क्योंकि आरोह में इस स्वर को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। कभी कभी तो राग में यह स्वर दीर्घ बहुत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है, जैसे सा रे तीव्र म, तीव्र म प ग म रे, रे तीव्र म ग म रे मंद्रनी, सा रे तीव्र म प, ध तीव्र म प इत्यादि। पंचम का इस राग में आंशिक न्यास वादी स्वर संबंधी न्यास बहुत्व होने के कारण सर्वांग न्यास स्वाभाविक हो ही जाता है। आंशिक न्यास बहुत्व शब्द का प्रयोग केवल वादी स्वर के लिए ही किया जाता है, क्योंकि वादी स्वर का दूसरा नाम अंश स्वर है। सर्वांग न्यास अथवा संपूर्ण न्यास उस स्वर के लिए कहा जाता है जिस स्वर पर आरोह अवरोह दोनों ही ओर से न्यास व विश्रांति होती है। संपूर्ण न्यास का स्वर वादी स्वर के अतिरिक्त भी राग में हुआ करता है। उदाहरणार्थ राग पुरिया कल्याण में पंचम को ले सकते हैं। पंचम का प्रयोग इस राग में इस प्रकार होता है, यथा प तीव्र म प, नि ध प, प ग म रे, रे म म प, नि तार सा, नि ध प, प ग म रे, मंद्र नि सा रे तीव्र म प। इस प्रकार पंचम का बाहुल्य होने से इसके लिए उपयुक्त स्थान उपयुक्त ही दृष्टव्य होता है। पृष्ठ संख्या 5। धैवत का प्रस्तुत राग में अवरोहात्मक अलंघन बहुत्व है, क्योंकि अवरोह में कभी भी इस स्वर को छोड़ते नहीं हैं, जैसे तार सा नी, ध प ध, तीव्र म प इत्यादि। निषाद का भी प्रस्तुत राग में न्यास अभ्यास बहुत्व है, यथा रे तीव्र म प नी, नि ध प तीव्र म प रे तीव्र म प नी, प नि तार सा तार रे तार सा नि तार सा ध तीव्र म प रे तीव्र म प नि इत्यादि। अवरोह में भी निषाद के साथ धैवत को भी दीर्घ रखना पड़ता है, जिससे शुद्ध सारंग की शंका दूर होती रहती है। तार सा नी, नी ध अवग्रह प, इसके स्थान पर कभी कभी अवरोह में नी तार सा ध अवग्रह प, इस प्रकार निषाद को लांग कर भी धैवत पर चले आते हैं। इस प्रकार अवरोह में दीर्घ बहुत्व के साथ ही साथ निषाद का लंघन और वक्र अल्पत्व भी दृष्टव्य होता है। षड्ज के लिए तो कहना ही क्या है, वह तो सभी राग का पूरक तथा राग रूपी साम्राज्य में सम्राट की भांति है। इस प्रकार राग में स्वरों के महत्व को समझने के लिए राग के स्वर विस्तार का भली भांति मनन करना अनिवार्य है। अर्ध विश्रांति एवं पूर्ण विश्रांति के स्थान पर विशेष ध्यान देने से इस महत्व का रहस्य शीघ्र ही बोधगम्य हो जाएगा। प्रस्तुत राग का संप्रकृति राग शुद्ध सारंग है। इससे बचने के लिए प्रारंभ में मंद्र नि सा रे म रे तीव्र म प ऐसा स्वर न लेकर मंद्र नि सा रे, रे कणयुक्त तीव्र म प, प ग म रे मंद्रनी रे सा, ऐसा स्वर समुदाय प्रयोग करने से शुद्ध सारंग की छाया न आकर श्याम कल्याण बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मध्यम का कर्ण युक्त रे, म रे, म का कर्ण लिए हुए मंद्र नी, सा रे सा, ऐसा स्वर गाने से शुद्ध सारंग की छाया आती है, परंतु इसके आगे मंद्र नी, सा का कर्ण लिए हुए मंद्र ध अवग्रह, मंद्र तीव्र म, मंद्र पंचम, मंद्र निषाद अवग्रह सा, ऐसा स्वर प्रयोग करने से शुद्ध सारंग की छाया मिट जाती है। प ध तीव्र म प, ग म प, ग म रे, स्वर समुदाय से कामोद राग समक्ष आता है, परंतु इसके आगे म रे मंद्रनी, मंद्रनी रे सा, ऐसा स्वर जोड़ने से कामोद का आभास समाप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि पूर्वांग में गंधार का प्रयोग तथा तीव्र मध्यम दीर्घ होने से कामोद की छाया मिटती है। रे म की संगति तथा निषाद के दीर्घ होने से कामोद की छाया मिट जाती है और उत्तरांग में तार सा नी ध तीव्र म प नी तार सा नी ध तीव्र म प नी ध तीव्र म प, इस प्रकार का स्वर समुदाय प्रयोग करने से शुद्ध सारंग की छाया दूर हो जाती है, क्योंकि शुद्ध सारंग में धैवत अल्प है और इसमें स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होता है। कल्याण ठाट के अन्य रागों की भांति इसका भी अंतरा प प तार सा से प्रारंभ किया जाता है। कोमल निषाद विवादी स्वर के नाते कभी कभी अवरोह में इस प्रकार प्रयुक्त होता है, सा ध कोमल नी प। कोमल निषाद के प्रयोग में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि श्याम कल्याण में कोमल निषाद बिलावल अंग से लिया जाता है और शुद्ध सारंग में सारंग अंग से। कुछ गायनाचार्य प म ग म रे सा इस स्वर समुदाय को श्याम कल्याण में प्रयोग करते हैं, जिससे बिलावल की छाया आती है, परंतु इसके बाद ही रे मंद्रनी, मंद्रनी रे सा स्वर जोड़ने से बिलावल की छाया दूर हो जाती है। पृष्ठ संख्या 6। इस राग को कुछ विद्वान केवल श्याम के नाम से संबोधित करते हैं तथा सा रे तीव्र म प इसका मुख्य अंग मानते हैं। उनका कहना है कि जिस राग में ये स्वर प्रयुक्त हो, उनमें राग श्याम का मिश्रण समझना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ रागों के नाम लिए जा सकते हैं, यथा तिलक श्याम, केदार श्याम, बैजंती। इन सभी रागों से इसकी पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त शुद्ध सारंग, सरस्वती, श्री कल्याण इत्यादि रागों में इसका मिश्रण कहना अनुचित न होगा। श्याम कल्याण में भी श्याम, कामोद और कल्याण इन तीनों रागों का मिश्रण मानना विचार करने से उचित ही प्रतीत होता है, परंतु प्रचार में इस समय यह मत मान्य नहीं है। इस हेतु प्रचार के अनुरूप ही राग मिश्रण का मत मानना अधिक श्रेयस्कर होगा। आरोह मंद्रनी सा रे तीव्र मध्यम प नी तारसा, अवरोह तारसा नी ध प, ध तीव्र म प, ग म प, ग म रे मंद्रनी सा। मुख्य स्वर मंद्रनी सा रे, रे तीव्र म प, ग म रे मंद्रनी रे सा।